तो फिर यहां से हजरत लुकमान और उनकी नसीहतों का जिक्र जो है वो शुरू होता है। हजरत लुकमान कौन थे? लुकमान की शख्सियत अरब में एक हकीम और दाना की हैसियत थी, और वो एक हकीम और दाना की हैसियत से बहुत मशहूर थे। हत्ता कि जो जमाना जाहिलियत के शायर हैं, मशहूर शायर जैसे अमराउल कैस है, लबीद, आशा और तरफा, तो इनके कलाम में भी हजरत लुकमान का जिक्र जो है वो मिलता है। अहले अरब में बाज जो पढ़े लिखे लोग थे उनके पास भी सहीफा लुकमान के नाम से कुछ हकीमाना अकवाल का मजमुआ उसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि उनके पास एक मजमुआ मौजूद था, और उस मजमुए का नाम क्या कहते थे वो? सहीफा लुकमान के नाम से उसको याद करते थे। चुनाचे रवायात में आता है कि हिजरत से 3 साल पहले मदीने का जो अव्वलीन शख्स जो रसूल अल्लाह से मुतासिर हुआ, जो सबसे शुरू में, वो सुवैद था, सुवैद बिन सामित, वो हज के लिए मक्का गया। वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे ना हज के मौके पर, तो आप हाजियों की कयामगाहों पे जा जाकर उनको इस्लाम की दावत देते। इस सिलसिले में सुवैद ने जब रसूल अल्लाह की तकरीर सुनी तो इसने आपसे कहा, आप जो बातें पेश कर रहे हैं ऐसी ही एक चीज मेरे पास भी है। आपने पूछा वो क्या है? इसने कहा मुजल्ला लुकमान। फिर आपकी फरमाइश पर इसने इस मुजल्ले का कुछ हिस्सा आपको सुनाया। आपने फरमाया ये बहुत अच्छा कलाम है, मगर मेरे पास एक और कलाम इससे भी बेहतर है। फिर आपने उसे कुरान सुनाया और उसने एतराफ किया कि बिला शुबा ये मुजल्ला लुकमान से बेहतर है। सीरत इब्ने हिशाम में ये वाकया है, और तारीख की किताबों में, रहीकुल मखतूम वगैरह में भी पढ़ सकती हैं। फिर कहते हैं कि ये जो था ना सुवैद बिन सामित, मदीने में ये अपनी लियाकत, बहादुरी, शेरो शायरी की वजह से और शरफ की वजह से कामिल के लकब से पुकारा जाता था, कामिल। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद जब वो मदीना वापस आया तो कुछ मुद्दत बाद ही जंगे बवास हुई, इसमें ये मारा गया। और कबीले के लोगों का आम ख्याल ये था कि ये हुजूर से मुलाकात के बाद मुसलमान हो गया था। तो इस सारी बात से हमें क्या बात पता चलती है कि लोग जो थे, अरब के लोग, अरब की सोसाइटी जो थी वो हजरत लुकमान से मुतारिफ थी। और आप देखिए कि हजरत लुकमान की शख्सियत के बारे में लोगों के हमें मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं। मसलन बाज कहते हैं कि ये इनकी लंबी उम्र थी, बहुत लंबी उम्र थी, यहां तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाना इन्होंने पाया है। और बाज ये कहते हैं कि हजरत लुकमान जो थे ये एक हबशी गुलाम थे, नज्जारी का काम करते थे। और इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से इनके जब हालात पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये पस्त कद, पस्त नाक के हबशी थे। और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हबशी गुलाम मोटे होंठ वाले, फटे हुए कदमों वाले थे। और इसी तरह एक स्याह रंग का हबशी हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई मसला पूछने के लिए आया। हजरत सईद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तसल्ली के लिए कहा कि तुम अपने काले होने पर गम ना करो, क्योंकि काले लोगों में 3 बुजुर्ग ऐसे हैं जो लोगों में सबसे बेहतर थे। कौन थे? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह नो शाबाश, और हजरत महजा, ये हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह नो के आजाद करदा गुलाम थे, और तीसरे हजरत लुकमान अलैहि सलाम। तो बहरहाल फिर असल बात क्या पता चलती है कि जो हजरत लुकमान थे जमहूर सल्फ के नजदीक ये नबी नहीं थे लेकिन वली थे और हकीम थे। जमहूर सल्फ का इस पर इत्तफाक है कि वो नबी नहीं थे लेकिन वो फकीह थे और हकीम थे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो एक और बात इनके बारे में पता चलती है कि ये बहुत समझदार थे, बहुत हिकमत वाले थे। हजरत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हजरत लुकमान अलैह इस्लाम की हिकमत के 10,000 से ज्यादा वाब पढ़े, इतनी ज्यादा थी इनकी हकीमाना बातें। बाज कहते हैं कि बनी इसराइल के ये काजी थे, ये बनी इसराइल के काजी थे। हजरत लुकमान के बारे में आता है कि एक दिन ये एक बड़ी महफिल में लोगों को हिकमत की बातें सुना रहे थे। एक शख्स आया और उसने पूछा, क्या तुम वही नहीं हो जो मेरे साथ फलां जंगल में बकरियां चराया करते थे? उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूं तो वही। और इस शख्स ने पूछा, फिर आपको ये मकाम कैसे हासिल हुआ कि खल्के खुदा आपकी ताजीम करती है और आपके कलमात सुनने के लिए दूर दूर से जमा होती है? लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका सबब मेरे दो काम हैं, एक हमेशा सच बोलना और दूसरे फजूल बातों से इज्तनाब करना। और एक रवायत में आता है कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चंद काम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस दर्जे पे पहुंचाया, अगर तुम इख्तियार कर लो तो तुम्हें भी यही दर्जा और मकाम हासिल हो जाएगा। और वो काम क्या है? अपनी निगाह को पस्त रखना और जबान को बंद रखना, हलाल रोजी पर कनात करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, बात में सच्चाई पर कायम रहना, अहद को पूरा करना, मेहमान की इज्जत करना, पड़ोसी की हिफाजत करना और फजूल काम और कलाम को छोड़ देना। तो बहरहाल उनको जो इतना ऊंचा और आला मकाम मिला हिकमत का, दानाई का, कि अल्लाह ताला ने कुरान में इनका जिक्र किया है, बड़ी बात है ना, नबी भी नहीं है फिर भी इनका जिक्र कुरान में हुआ है। तो और वो वाकया मैं आपको एक दफा सुना भी चुकी हूँ, ये वाला वाकया ना, कि मशहूर वाकया है कि गुलाम थे, इनके आका ने कहा कि बकरी जिबा करके इसके सबसे बेहतरीन दो हिस्से लेकर आओ, चुनाचे वो जबान और दिल निकाल कर ले गए। एक दूसरे मौके पर आका ने इनसे कहा कि बकरी जिबा करके इसके सबसे बदतरीन हिस्से लाओ, अब फिर वो बकरी जिबा करके फिर जबान और दिल निकाल कर ले गए। वो बड़ा हैरान हुआ कि जब बेहतरीन हिस्से कहा था तब भी तुम जबान और दिल लेकर चले आए, और अब बदतरीन हिस्से कहा है तो फिर भी तुम जबान और दिल निकाल कर जो है वो आगे। तो इन्होंने बताया कि जबान और दिल अगर सही हो तो ये सबसे बेहतर, और अगर ये बिगड़ जाए तो फिर ये सबसे ज्यादा जो है ना ये बदतरीन बन जाते हैं। तो गोया के इनकी एक बात नहीं, बेशुमार बातें थी, और ये अरब में अपनी हिकमत और दानाई की वजह से मशहूर थे, मुत्तकी थे, नेक थे और अल्लाह के शुक्रगुजार थे। और दूसरी बात ये कि इनका अपने बेटे के साथ बड़ा ही प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक था। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वलकद आतैना लुकमान अल हिकमता, हमने लुकमान को हिकमत अता की थी। लुकमान जो अरब में हकीम और दाना के नाम से मशहूर था, तो हिकमत उसके पास कहां से आई? आतैना, हमने दी थी लुकमान को हिकमत। अनिश्कुर लिल्लाह, के अल्लाह का शुक्रगुजार हो, कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। व मैं यशकुर, और जो कोई शुक्र अदा करेगा, फइन्नमा यशकुरू लिनफ्सी, तो वो जो शुक्र अदा करेगा तो वो क्या करेगा, अपने जाती नफे के लिए शुक्र अदा करेगा। वमन कफरा, और जो इनकार करेगा और जो कुफ्र करेगा, फइन्नल्लाह गनीउन हमीद, तो दर हकीकत अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। अब आप देखिए कि अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि हिकमत कहते किसको हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पे ऐलान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने लुकमान को हिकमत अता की थी। हिकमत किसे कहते हैं? कुरान मजीद में हिकमत लफ्ज जो है वो मुतअद्दद मानी में इस्तेमाल हुआ है, हिकमत। और जैसे आप देखें कि अभी जो कल ही का सबक था उसमें भी आपने पढ़ा ना, हकामा, हकीम, हिकमत लफ्ज आपने वहां पे भी पढ़ा ना। तो वैसे अगर आप देखें तो जो ये हकामा लफ्ज है, हकामा यहकुमु हुक्मन और हकूमत, फैसला करना, हुक्म देना, ये माने भी रखता है। और हकुमा यहकुमु हिकमतन, दाना और दूरंदेश होना, इसके लिए भी आता है। ऐन कलमे की हरकत में फर्क पैदा हो जाए या मजदर जो है मजदर में फर्क हो जाए तो मानी में तब्दीली पैदा होती है। तो यहां पर भी जो बात हमारे सामने आती है वो क्या है कि हमने लुकमान को हिकमत अता की थी। तो कुरान में हिकमत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इल्म के लिए, अकल के लिए, हिल्मो बुर्दबारी के लिए, नबुवत, असाबते राय। अबू हयान ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह, हिकमत से मुराद वो कलाम है जिससे लोग नसीहत हासिल करें और इनके दिलों में मुअस्सर हो और जिसको लोग महफूज करके दूसरों तक पहुंचाएं। हर कलाम हिकमत वाला कलाम नहीं होता, क्योंकि हर कलाम से अगर नसीहत हासिल नहीं होती तो हकीमाना कलाम तो नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने फरमाया, हिकमत से मुराद अक्लो फहम और जहानत है। बाज लोग कहते हैं कि इल्म के मुताबिक अमल करना हिकमत है। मतलब आप देखें, आपने 20-21 पारे पढ़ ली हैं, तो जितना हिस्सा आपके अमल में है उतनी हिकमत है आपके पास। अगर इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है तो फिर उतनी हिकमत नहीं मिली जितने पारों की गिनती हम कर रहे हैं, वो मैं हूं या आप हो। तो ये सभी चीजें हिकमत में दाखिल हैं। और खुलासा तफसीर में हिकमत का तर्जुमा फिर क्या समझ में आएगा? दानिशमंदी, इल्म, अमल। और आपको ये बात भी पता है कि रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह, हिकमत की जड़ बुनियाद जो है ये अल्लाह का खौफ है। तो अल्लाह ताला ने लुकमान को हिकमत अता की, क्या अता किया? अपना खौफ अता किया, इल्म अता किया, अमल अता किया, हिकमत और दानाई की बातें अता की, उनको जहानत दी, उन्हें जो है वो मजबूत राय और इल्म और बुर्दबारी से जो है वो आरास्ता किया। अब यहां पे एक तरफ कह रहे हैं कि हमने हिकमत अता की और साथ ही कह रहे हैं अनिश्कुर लिल्लाह, कि अल्लाह का शुक्रगुजार हो। बात क्या आई सामने कि अल्लाह की बख्शी हुई हिकमत और दानाई का अव्वलीन तकाजा ये है कि इंसान अपने रब का शुक्रगुजार और एहसानमंद हो। और आप देखें गोया के अब यहां पे शुक्र इख्तियार करने को कहा जा रहा है, और शुक्र जो है वो किसे कहते हैं? शुक्र का लफ्ज आप बहुत शुरू में भी पढ़ चुकी हैं, है ना, कई दफा पढ़ चुकी हैं। तो शकरा के मानी क्या होते हैं? उमड़ आना, उबल पड़ना। तो शकरा जो है इसके मानी होते हैं किसी नेमत का तसव्वुर और इसका इजहार करना। बाज लोग कहते हैं कि शकरा जो है असल में ये कशरा भी है, जैसे कशफ नहीं होता उसके मानी होते हैं खोल देना, तो शकरा के मानी होते हैं नेमत को खोलना। दाबत उन शकूर, उस चौपाए को कहते हैं जो अपना मोटापा जो है जाहिर कर रहा हो। दाबत उन शकूर, जो अपनी फरबही जाहिर कर रहा हो कि इसके मालिक ने इसकी खूब परवरिश की है, बड़ी हिफाजत की है। बास कहते हैं आइनुन शकरा, ऐसी आंख को कहते हैं कि आंसुओं से भरपूर आंख। क्यों आंसुओं से भरपूर हुई? शिकवे शिकायतें करके नहीं, मुनीम के जिक्र से भर जाना। जब अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की नियमतों का जिक्र हो, तो आंखों में आंसू आने लगे, एतराफे हकीकत के तौर पर। और शुक्र के अंदर तीन बातें खास तौर पर पाई जाती हैं, नेमत का तसव्वुर करना, है ना, नेमत का तसव्वुर करना, ये क्या है? कल्बी शुक्र। दूसरा है फिर नेमत का एतराफ करना, इजहार करना जबान से, शुक्रे लिसानी। तीसरा है शुक्र बिल जवारे, जवारे का मतलब क्या है? जिस्म के जो अज़ा हैं उनसे अल्लाह का शुक्र अदा करना। ए मलू आला दाऊद शुक्र, ए दाऊद की आल मेरा शुक्र अदा करो, है ना। तो अब यहां पर भी क्या कहा जा रहा है कि अनिश्कुर लिल्लाह, कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। और कुरान में अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कलीलु मिन इबादी या शुकूर, और मेरे बंदों में शुक्र गुजार थोड़े ही हैं, बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करने वाले हैं। और अरबों के यहां क्या रिवाज था कि नाकतुन शकेरतुन, दूध से भरे हुए थनों वाली ऊंटनी के लिए वो इस्तेमाल करते थे, ये मकूला उनका मशहूर है। इसी तरह हुआ अशकरु मिन बुरूक बारा वौकाफ, वो बुरूक घास से भी ज्यादा शुक्रगुजार है। बुरूक घास के मुतालिक मशहूर है कि हल्की सी बारिश से हरी भरी हो जाती है, जैसे रूखी सूखी खाकर कोई जो है वो पेट भर ले और फिर उसका जिस्म पे जो है वो नेमत के असरात नजर आए तो लगता है कि बड़ा खुशगवार जिंदगी कोई बसर कर रहा है। तो गोया के जो बात यहाँ पे बताई जा रही है वो क्या है कि ऐसी ऊंटनी जो थोड़ी सी घास खाती है, फिर उसके बाद उसके थन दूध से भर जाते हैं, बहना शुरू हो जाता है। तो शकरा के मानिए उमड़ आना, उबल पड़ना, अल्लाह की नियमतों का इजहार करना। तो शुक्र के लिए आप क्या बात कहेंगी, एतराफे नेमत, इजहारे नेमत। एतराफ कहाँ पे किया जाता है? दिमाग में और कल्ब में। जब तक आपके अंदर एतराफ नहीं है, मेरे अंदर नेमतों का एतराफ नहीं है, तो इजहार नहीं हो सकता। ठीक है, तो शुक्र किसे कहते हैं? एतराफे नेमत को। एतराफ कहाँ करना है? दिल के अंदर, कल्ब में और दिमाग में। फिर क्या करना है? इजहार करना है, इजहारे नेमत। इजहार कैसे करना है? जबान से भी करना है और अपने अमाल से भी करना है, इजहारे नेमत। तो असल बात क्या है कि हमारे अंदर एतराफे नेमत ही नहीं पाया जाता, तो इजहार कहां से करेंगे? और देखें तो अनगिनत नेमते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मुझे और आपको माला माल किया हुआ है, और हमें जो है उनकी उनके बारे में सोचना चाहिए। मसलन किसी के पास औलाद नहीं है तो भी ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। क्यों औलाद नहीं है तो बहुत बड़ी नेमत है कि वो अपने वक्त का इस्तेमाल अल्लाह की इबादत, बंदगी में, अल्लाह के जिक्र में, कुरान के फैलाने में, दीन इस्लाम की खिदमत में सर्व कर सकता है। अब औलाद तो नहीं है लेकिन वो सारा वक्त नशुक्री करता रहता है। उसका दूसरा रुख देखना चाहिए ना कि वो लोग जो औलाद जिनको अल्लाह ताला ने दी है वो भी बहुत बड़ी नेमत है, जिनको दी है वो भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन वो औलाद के पीछे सुबह से लेकर शाम तक भागे रहते हैं। तो अब ये क्या करे? अब ये नहीं कि हर वक्त रोता धोता और शिकवों से जबान पोर रहे, नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला तूने मुझे जिस हाल में रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और फिर क्या करे कि अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करके अल्लाह के दीन की खिदमत करे। इतराफ करना अल्लाह की नेमतों का। और एक नेमत नहीं है तो जो नेमत नहीं है ना उसका उसके बारे में सोच सोच के कूड़ा ना जाए, और जो नेमतें मौजूद है ना उनकी फहरिस्त बनाकर, उनको गिनकर जो है फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। औलाद है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास शौहर है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास नहीं है, अब वो क्या करे? अब वो कुड़ना नहीं चाहिए उसको, अल्लाह के फैसले पे राजी होने के बाद क्या कहे? अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफनी खैरम मिनहा। इस मुसीबत में मुझे अजर दे दे और इससे इसका बेहतरीन मुझे नेमुल बदल अता कर, बेहतरीन नेमुल बदल अदा कर। तो हर वक्त अपने सोचों के जाविये बदल देने चाहिए और सोचना चाहिए कि ये नेमत तो नहीं है लेकिन ये नेमत तो है ना, ये नहीं है लेकिन ये तो है ना। तो नहीं की तकरार ना हो, शिकवों पे असरार ना हो, और फिर किस पर इसरार हो और इकरार हो? अल्लाह की नेमतों पर। हर वक्त अल्लाह की नेमतों को के बारे में सोचना, उनको गिनना, उनको शुमार करना, और फिर अल्लाह का एहसान मंद होना, ये बहुत बड़ी नेमत है जिस पर अल्लाह ताला यहाँ पे हम सबको मुतवज्जो करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जो है वो लुकमान को हिकमत अता की थी, और हिकमत का पहला जो फल है वो अल्लाह की शुक्रगुजारी है। अल्लाह जिसको हिकमत देता है वो अपने रब का शुक्रगुजार होता है। और शुक्रगुजारी क्या होती है? शुक्रगुजारी तो बंदगी है। जिंदगी का सफर काटना है अगर झूम कर आह भरने का फन सीख ले, तेरा सोजे दरूं तुझको देगा जुनून, कांटों पे रक्स करने का फन सीख ले, है ना। तो हिकमत क्या है? शुक्र। शुक्र क्या है? बंदगी। अनिश्कुर लिल्लाह, कि अल्लाह का शुक्र गुजार हो। और शुक्र गुजारी तीन तरह से की जाती है, लिसान से, कल्ब से और जवारे से। तो सबसे पहले तो दिल में होती है ना, दिल में, कल्ब में, कल्ब और दिमाग में। फिर जबान से एतराफ करना, और फिर पूरे जिस्म के आजाद जो हैं वो उसका अमली इजहार करते हैं। बंदगी में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की हम्द में इंसान मसरूफ हो जाता है। अच्छा, अब आप देखें कि सुबह से लेकर शाम तक मैं और आप कितनी दफा शिकवे करते हैं। अब बच्चे तो नेमत हैं लेकिन कहते क्या है? बड़ी मुसीबत है, सारा दिन बच्चों के पीछे भागते भागते थक जाती हूँ। पहले स्कूल छोड़ने जाओ फिर लेने जाओ, अभी नाश्ता दिया था फिर उनका ब्रेक, उसका लंच का टाइम हो गया, अभी वो ही कर रही थी, एक को देती हूँ दूसरे का, दूसरे को देती हूँ तीसरे का, और फिर ऊपर से फिर शौहर के आने का टाइम हो जाता है। मेरी कोई लाइफ है? ये भी कोई लाइफ है? अब देखें कि मैं और आप बच्चों के बारे में कैसे बोल बोलते रहते हैं, जरूर इस बात का जायजा लें। मैं शुक्रिया ना अल्लाह की, अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, दिन की रोशनी में जुगनू को पकड़ने की जिद करें। बच्चे तो ऐसे ही हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन मैं और आप जो है वो क्या करते हैं, क्यों नशुक्री करते हैं? बाज़ औक़ात शोहर की बड़ी नशुक्री करते हैं। और हदीस है ना, मेराज पे जब रसूल अल्लाह गए, आपको जहन्नुम दिखाई गई, तो आपको औरतों को ज्यादा दिखाया गया, जहन्नुम में औरतें ज्यादा थी। पूछा क्यों, तो कहा कि औरतें अपने शोहरों की नशुक्री की वजह से। तो कितनी नशुक्री करते हैं हम अपने शोहरों की, कितना हम रोना रोते हैं। फिर इसी तरह वालदैन की बड़ी नशुक्री करते हैं, वालदैन ने हमारे साथ 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 क्या क्या किया, हम वालदैन के साथ क्या करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह की नेमतों का इतराफ करें, इकरार करें, फिर इजहार करें, अमल करें। अनिश्कुर लिल्लाह, कि अल्लाह का शुक्र गुजार हो, और शुक्र की तलकीन और शुक्र की हकीकत जो है वो ये है कि अल्लाह की बंदगी की जाए। वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह, और जो कोई शुक्र करे, हिकमत क्या है शुक्रगुजारी, और जो कोई शुक्र करे फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह, तो उसके अपने ही लिए जो है वो मुफीद है। जो कोई शुक्र करेगा, जैसे कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं लइन शकरतुम लजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें खूब तुम्हें तरक्की दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो शुक्र करता चला जाता है, अल्लाह शुक्र नेमत के तौर पर उसके जो नेमते हैं उसको बढ़ाता चला जाता है, इल्म बढ़ता है, उसको अमल की तौफीक होती है, दुनिया में जो है वो अल्लाह ताला उसको इज्जत देता है, आखिरत में सवाब देगा। तो गोया कि दुनिया है, दीन है, आखिरत है, हर चीज में शुक्रगुजारी की वजह से उसकी नेमतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो अब आप देखिए कि वमई यशकुरु फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, कि जो कोई शुक्र करता है तो उसका फायदा जो है वो उसी को है, किसी दूसरे को कोई नहीं फायदा शुक्र का, अपने ही नफे के लिए इंसान शुक्र करता है। वमन कफरा, और जो कोई इनकार करे, जो कोई कुफर करे, फइन्नल्लाह गनीयुन हमीद, तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। अगर कोई कुफर करेगा, इनकार करेगा, तो नुकसान अल्लाह का नहीं होगा, बंदे का खुद अपना नुकसान है, बंदा जो है उसका अपना नुकसान होगा। तो यहां पे फिर हमारे लिए अमल का क्या उसूल सामने आया, हमारे अमल के लिए ये उसूल सामने आया कि अल्लाह ताला ने जो है वो बंदों से शुक्रगुजारी का जो मुतालबा किया है, अल्लाह ताला ने बंदों से जो बंदों के लिए ये अमल पसंद किया है कि लोग शुक्रगुजार हों, तो इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह को कोई नफा मिलने वाला है, बंदों का अपना ही नफा है। जो अल्लाह का शुक्रगुजार होगा उसकी दुनिया भी संवर गई और उसकी आखिरत भी बन गई। रहा अल्लाह का मामला, तो अल्लाह कैसा है, फाइनल्लाह गनीउल हमीद, अल्लाह तो हकीकत में बेनियाज है। और यहाँ पे हमीद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि आपसे आप तारीफ वाला, महमूद होता है ना कि कोई उसकी तारीफ करे, तो यहाँ पे कहा हमीद है। कोई तारीफ करे या ना करे, कायनात का जर्रा जर्रा इसके कमाल, जमाल, खल्लाकी, रज़ाकी पर शहादत दे रहा है। हर मखलूक ज़बाने हाल से अल्लाह की हम्द बजा ला रही है। कोई अल्लाह के एहसानात की कदर करे या ना करे, अगर कोई करे तो अल्लाह की बुजुर्गी में इजाफा नहीं कर सकता, अगर कोई ना करे तो अल्लाह के कमाल और जमाल में कोई कमी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला हमीद है, गनी है। तो इससे फिर क्या बात हमारे समझ में आती है कि हमें अपनी अपने फायदे के लिए, अपने नफे के लिए हम सबको अल्लाह का शुक्रगुजार जो है वो होना चाहिए। और असल शुक्रगुजारी क्या है, बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हम एक तरफ अल्लाह को मानते भी हैं लेकिन शाकिर नहीं हैं, एक ऊंटनी तो अपने मालिक की जो है उसके लिए शाकिर हो जाए और हम अपने रब के लिए शाकिर ही ना हो, तो बड़ी अजीब बात है ना। क्या बात समझ में आई? अब आप देखें कि ये जो हमने आयत पढ़ी है तो इस आयत का निचोड़ क्या है। यहां पर अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को कहा कि हिकमत दी थी। हिकमत से मुराद क्या है? इल्म और अमल दोनों से नवाजा था। और हिकमत में कमाल होता है शुक्र करने से। जो जो इंसान शाकिर बनता चला जाता है तो हिकमत में तरक्की होती चली जाती है, गोया कि वो आला दर्जे के जो हकीम बने। आप सोचिए उनकी बातें इतनी हकीमाना थी कि अरब जमाना जाहिलियत में भी उनको याद करते थे। बड़े ही खुदा तर्स, बड़े ही अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह को मानने वाले। और किसी ने उनसे पूछा भी कि तुमने ये हिकमत कहां से हासिल की, वो थे तो गुलाम है ना, तुम इतने नेक कैसे बन गए, तुम्हें ये मर्तबा और मकाम कैसे मिला, ये शऊर कैसे मिला। तो उन्होंने क्या बताया था? रास्तबाजी, सच बोलने की वजह से, इमानत इख्तियार करने से, बेफायदा बातों के इज्तनाब से और खामोशी से। अब आप देख लें कि लाहवल हदीस को अगर हम छोड़ देंगे अपनी जिंदगी से, मैं और आप लाहवल हदीस निकाल दें, फोन पर पहरों बैठकर लोगों की बातें करना और अफसाने नावल फजूलियात पढ़ना, या कंप्यूटर पर या टीवी पर फजूल चीजों के अंदर उलझे रहना, मसरूफ रहना है ना, ऐसी फजूल बातें, ऐसी बैठक, कुछ भी जो भी हमारी जिंदगी में लावल हदीस से में पाया जाता है, हमें उसको निकाल बाहर करना चाहिए। वो नाच गाने की महफिलें हो, वो साज हो, वो कुछ भी हो, हमें उससे कराहत का जो है वो इजहार करना चाहिए, उसमें दिल नहीं लगाना चाहिए बहानों के साथ। और आप देखें कि जब भी लाहवल हदीस में मुब्तिला होते हैं, सब बाकी जो चीजें मुतासिर होती हैं, अल्लाह की बंदगी मुतासिर होती है, नमाजें कजा होने लगती हैं, कुरान की रूटीन हट जाती है, और जो थोड़ा बहुत अमल कर रहे होते हैं उस पर शर्मिंदगी होती है कि सारा किया कराया मैंने गारत कर दिया, क्यों मैंने ऐसा किया। इंसान जो है वो खुद अफसुरदा जो है वो होता चला जाता है। अब यहां पर एक तरफ जो है वो हजरत लुकमान का तारफ करवाया गया कि वो शाकिर थे, वो हकीम थे, हिकमत से माला माल थे। अब दूसरी तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लुकमान जो थे उनका अपने बेटे से कितना खूबसूरत ताल्लुक था, वो अपने बेटे से जो है वो बहुत प्यार करते थे। तो हजरत लुकमान की अपने बेटे को पहली नसीहत जो है वो क्या है, आप देखें कि ऐसे नहीं है कि जैसे बाज वालदैन होते हैं कि उनको इस बात की कोई ना परवाह होती है ना फिक्र होती है कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हजरत लुकमान जो थे वो कैसे थे। वाइज़ क़ाल लुकमानु लिबनिही, और जब कहा लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, किसी और के बेटे को नहीं, अपने बेटे को, इससे क्या बात पता चलती है कि दूसरों को नसीहत करना और अपने घर वालों को नसीहत ना करना, चिराग तले अंधेरा, के घरों से निकल गए और अपने घर की खबर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या हुक्म दिया गया था, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से। अब आप देखें कि आयत 12 में उनका अपना अमल बताया जा रहा है कि वो कैसे थे, और आयत 13 में वो अपने बेटे के साथ जो थे उनका मामला जो था वो कैसा था। तो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, लिब ने ही अपने बेटे को, वाहुआ याइज़ुहू, और वो अपने बेटे को वाज कर रहा था। और वाज किसे कहते हैं? ऐसी नसीहत जिससे लोग नसीहत, जिससे लोगों के दिल पिघले और वो नसीहत हासिल करें, जो उनके दिलों में एक तासीर छोड़े, जिसको वो दिलों में एक असर हो। वाहुआ याइज़ुहू, वो अपने बेटे को वाज कर रहा था, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, या बुनैया, ए मेरे बेटे, बाप का बेटे से बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत मोहब्बत भरा रिश्ता है, कि बाप जो है ऐसा नहीं है कि बेटे को जो है वो प्यार से मुखातिब नहीं करता, या बुनैया, ए मेरे बेटे। जैसे बाज़ का बच्चे को प्यार से कहते हैं बिटिया, बेटे जान, बाज़ लोग अपने बच्चों को बहुत मोहब्बत से जो है ना उनसे बात करते हैं। तो ये भी अपने بیٹے سے اپنی اولاد سے بات کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اولاد ہی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے متعلق انسان انتہائی خلوص جو ہے برتتا ہے، نفاق نہیں کر سکتا. انسان اپنی اولاد کو وہ کہتا ہے جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے، جو بہترین چیز ہوتی ہے، اور اولاد ہی کے متعلق اس کی آرزو ہوتی ہے کہ بھلائی کی بات میں اس کی اولاد سب سے آگے نکل جائے. حتیٰ کہ یہ آرزو بعض اوقات انسان اپنی حقیقی بہن بھائیوں کے بارے میں بھی نہیں کرتا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو اب آپ دیکھیں کہ نصیحتیں تو لقمان علیہ السلام کی بہت زیادہ تھی، دنیا والوں کے لیے تھی، لیکن قرآن نے اس نصیحت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد سے کی ہے، لخت جگر کو کی ہے. وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ گمراہی سے پرہیز کرے. اور پھر کیوں نصیحت کی؟ لا تشرک باللہ. کیا نصیحت کی؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو یہ نصیحت کے توحید پرست بننا اور شرک نہ کرنا، یہ کیا تھی؟ کہ اہل مکہ شرک میں مبتلا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے منہ موڑ رہے تھے. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری سرزمین میں، تمہارے ہی عرب کی دنیا میں ایک حکیم گزرا ہے جس نے اپنی اولاد کی خیر خائی کا حق ادا کیا، اور یوں ادا کیا کہ اس نے اسے شرک سے پرہیز کرنے کی نصیحت کی. اور تم کیسے عجیب والدین ہو کہ اپنی اولاد کو اسی شرک پر مجبور کر رہے ہو. یہ بدخواہی ہے یا خیر خواہی؟ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے سے خیر خواہی کیا تھی، اور تمہاری اپنی اولاد سے خیر خواہی کیا ہے، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے بات کہی، اور کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ایک دانش مند باپ ہے، اور عقل مندی کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنی اولاد کی فکر کی جائے. اور عقل مندی کیا ہوتی ہے؟ خود علم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی با عمل بنانے کی فکر کی جائے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک جو ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان کلمات حکمت میں سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنے کی فکر کی گئی ہے. عقیدے کی حیثیت جڑ اور بیج کی سی ہے. جڑ ٹھیک ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، درخت تناور بنتا ہے. اگر بیج ٹھیک ہوتا ہے تو پودا اچھا بنتا سنورتا ہے. تو سب سے پہلے جو بات اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق مالک ہے، اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اولاد بھی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارا جائے اور انصاف کے خلاف کام کیا جائے، کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھنا، جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ پیدا کرنے والے کی بجائے بتوں کی پرستش کرنا، پوجا کرنا، یہ کیا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورۃ انعام کی یہ آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام پر بڑی شاک گزری، بڑی سخت ان پر گزری. وہ کہنے لگے ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، ہر گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ شرک مراد ہے. کہ تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جنہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان شرک لظلم عظیم؟ یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، جیسے اللہ کی الوہیت میں جو ہے وہ شرک کیا جائے، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں شرک کیا جائے، یہ شرک ہے. جیسے مثلا آپ کوئی مثال دیں، کوئی مثال دیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں شرک کرنا کیسے ہے. بالکل صحیح بات ہے. جیسے کسی انسان کو یہ سمجھنا کہ وہ داتا ہے، تو اصل داتا تو اللہ ہے نا، انسانوں میں اللہ کی صفات کا عکس تو ہے، لیکن اللہ کے پاس جو صفات ہیں وہ کامل ہیں، اللہ صفات کا مالک ہے. یعنی انسانوں کے پاس جو صفات ہیں وہ کیا ہیں، ناقص ہیں، لیکن اللہ کے پاس کامل ہیں. اللہ مالک ہے لیکن انسان مالک نہیں ہے، انسان مالک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت کے اختیارات تو اللہ کے پاس ہے نا، اور اللہ کامل ہے، اللہ مالک ہے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے اس کے اندر جتنی بھی صفات ہیں بدرجہ اتم بدرجہ کمال کو پائی جاتی ہیں. اس لیے جتنی بھی صفاتی اللہ کے نام ہیں وہ اللہ کے نام بن گئے ہیں. صفت کسی میں بہت زیادہ ہو، مکمل ہو، اس میں نقص نہ ہو تو اس کا نام بن جاتی ہے. آپ بھی رحم کرتے ہیں لیکن آپ کو رحیم تو نہیں کہا جاتا. کون ہے ہم؟ امت الرحیم، عبد الرحیم، رحم کرنے والے کے بندے اور بندیاں ہے نا. حالانکہ ہم بھی سنتے ہیں لیکن سمیع ہمارا نام نہیں ہے، عبد السمیع، امت السمیع اللہ کا نام ہے. اللہ سننے میں کامل ہے. کیسے؟ وہ تو چونٹی کی بات بھی سنتا ہے. اس نے تو اس عورت کی بات سن لی جو حضرت عمر سے جھگڑا کر رہی تھی ہے نا، اشتکی جھگڑا کر رہی تھی. تو دنیا نہیں سن رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، چھپے کہہ رہا ہے، زور سے کہہ رہا ہے، دل میں کہہ رہا ہے جو ہے وہ. اب لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دورہ ہے، اور وہ کس لیے گئے ہیں کہ اللہ سے پانی کی دعا مانگے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو کیا کہتے ہیں کہ چونٹیاں جو ہیں نا انہوں نے اللہ سے ٹانگے اٹھا اٹھا کر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لیا. اب آؤ ہمارا کام چونٹیوں نے کر دیا، آؤ واپس چلو. تو اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفات مکمل ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے. عقیدے کی درستگی جو ہے سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی. اور پھر اس کے ساتھ کیا نصیحت کی گئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، وصیت. وَصَّى اس کے اندر کیا معنی پائے جاتے ہیں، تاکیدی حکم کرنا، نصیحت کرنا، تاکیدی نصیحت. تو ہم نے جو ہے وہ انسان کو نصیحت کی. الانسان، تمام انسان، اور تمام جتنی بھی شریعتیں گزری، جتنے مذاہب گزرے، جتنے معاشرے گزرے، سارے کے سارے معاشرے جو ہیں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر متفق ہیں. اور انسان کو کیا نصیحت کی، بے والدئی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ مزید تفصیل نہیں بتائی، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہوا بالوالدین احسانا، یہاں پہ کوئی ایسی آپ کو تفصیل نہیں پتا چل رہی. کیا پتا چل رہا ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان جو ہے اس کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کر دی. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حق کے ساتھ جس انسان کے حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین ہیں. تو توحید کے بعد حقوق العباد میں سے جس کا سب سے زیادہ حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، وہ انسان کے والدین ہیں. اور والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کی شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے. تو ماں باپ کی اطاعت اور شکر گزاری یہ بہت اہم ہے. جیسے شرک بڑا سنگین اور عظیم جرم ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا بھی بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے. پھر کیا فرمایا، اب یہ کہا بے والدی ہی، دین تھا اصل میں، نون گر چکا ہے، دونوں کے ساتھ، یعنی والدین دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. لیکن اب ماں کا ذکر خاص طور پہ کیا جا رہا ہے، حملت ہو امہ، اس کی ماں نے اس کو جو ہے وہ کیا کیا، پیٹ میں رکھا اس کو. حمل کو ہوتا ہے اٹھانا وزن، اور یہ مانگنی اٹھانا بھی ہوتا ہے اور ظاہری طور پہ اٹھانا بھی ہوتا ہے، حصی بھی ہوتا ہے اور مادی بھی ہوتا ہے نا. کسی جانور پر سامان رکھا ہوا ہو اس کے لیے بھی آتا ہے، اور اب ماں نے پیٹ کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا بچہ، نظر تو نہیں آتا کئی اندھیروں اور تاریکیوں میں. حملت ہو امہ، پیٹ میں رکھا اس کو، ہو اس بچے کو رکھا پیٹ میں امہ اس کی ماں نے. وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف. اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے تکلیف کا، اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پھر اس سے مراد کیا ہے، تکلیف سے مراد کیا ہے؟ کمزوری جو ہے، کمزوری تو بہت سی ہوتی ہے، جیسے ضعیف بھی کمزور ہوتا ہے لیکن طاقت میں کمزور ہوتا ہے، طاقت اور قوت میں کمزور کو ضعیف کہتے ہیں. پھر وحیہ، انشقت السماء فہیہ یومئذ واہیہ، یہ بھی کمزوری ہوتی ہے لیکن کسی چیز کا پرانا ہونے کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے. وہا، یا کسی کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ جائیں، ہے نا، یا کوئی رسی وغیرہ، کپڑا وغیرہ پرانا ہو کر جیسے پھٹ جائے. ایک ہوتا ہے وہن. وہن کیا ہوتا ہے؟ مادی طور پر ہڈی یا سخت چیز کے کمزور ہونے کے لیے، اور مانوی طور پر عمل کی کمزوری، اخلاقی کمزوری کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. طاقت نہ رہنے کی وجہ سے کمزور پڑنا، اخلاقی طور پر کمزور ہونا، عمل کی کمزوری، ہر طرح کی. آپ نے پیچھے سورت پڑھا ہے نا، سورت عنکبوت میں، ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت. تو وہن، طاقت میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے کمزور اور سست پڑ جانا. تو مختلف کمزوریاں ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کہا کہ تیری جو ماں تھی، وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، وفصالہ، اور فاصلہ کرنا اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا، فی عامینی، دو سال میں. عامن ایک سال کو کہتے ہیں، عامین دو سال. دو سالوں میں بچے کا دودھ چھڑانا. انشکرلی، کہ شکر کر میرا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر جو ہے حقوق العباد میں سے والدین کا ذکر جو ہے وہ سر فہرست ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین سے بہتر سلوک کرنے کا ذکر کیا، اور جیسے آپ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 کو آپ دیکھیں کہ والدین کی اہمیت پر اللہ رب العزت نے بہت تاکید کی ہے، بہت زور دیا ہے، اس لیے کہ والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے گھلتے ہیں. اور ماں خاص طور پہ، کون سی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ ماں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ ماں کا حق جو ہے وہ باپ کے حق پر مقدم ہے. اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بچے کی تربیت میں سب سے بڑا حق تو والدین کا ہے، اور والدین دونوں میں سے ماں کا حق خدمت جو ہے وہ زیادہ ہے. اور آپ کو مشہور حدیث تو پتہ ہی ہے نا کہ ایک شخص نے جو ہے جب پوچھا کہ مجھ پر کس کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، تین دفعہ ماں کا کہنے کے بعد چوتھی دفعہ آپ نے کہا کہ تیرے باپ کا، پھر کہا آپ نے کہ تیرے باپ کا، یعنی چوتھی دفعہ کا، پہلے نہیں کہا، پہلے تین دفعہ مسلسل پوچھنے پر آپ نے ایک ہی بات کہی، اور وہ بات کیا تھی کہ تجھ پر تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا، اور اس کے بعد کہا کہ تیرے باپ کا جو ہے وہ حق ہے. تو اب یہاں پہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ تیری ماں نے وہن پر وہن، وہن ذوف پر ذوف، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانے میں، دودھ چھوٹنے میں پھر دو سال کا عرصہ لگا. تو یہاں پہ حمل کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کس کا ذکر ہے؟ دودھ پلانے کا ذکر ہے. تو گویا کہ یہ دونوں عمل جو ہیں یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، بڑے مشکل عمل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر آپ ماں کے زوف کو دیکھیں کہ جب ماں جو ہے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب وہ حمل میں سے گزر رہی ہوتی ہے، تو قرآن اس کو کہتا ہے وہن، وہنن علی وہن، وہنن علی وہنن، وہ کمزوری پر کمزوری. تو گویا کہ پریگنینسی کا زمانہ کوئی آسان زمانہ نہیں ہوتا، قرآن اس کی وٹنس دیتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس وقت ماں جو ہے وہ تکلیف کے مرحلے سے جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے. آپ سوچیے، ایک جان کے اندر جان پیدا ہو رہی ہے، औरत कितने महीने बाद, अभी हमल शुरू ही होता है, सर चकराना शुरू हो गया, मतली आनी शुरू हो गई, खा नहीं सकती, खा देती है तो कह आ रही है, फिर जो है पकाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, खाना तो दूर की बात, घर के बाकी लोगों की जिम्मेदारी, ब्रश नहीं कर सकती, और जो है वो बात मतलब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कैफियात होती है, खुशबू से स्मेल से तबीयत खराब हो रही है, कभी वॉमिटिंग आ रही है, कभी बेहोश हो रही है, और फिर आप देखें खून की कमी हो गई है, दवाइयां ले रही है और मुसलसल, और फिर जूं जूं बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसकी नकलो हरकत कमजोर होती चली जाती है, फिर वो लेट भी नहीं सकती, एक एक दिन करके उस पर पहाड़ बनकर जो है वो गुजरता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो जिक्र किया है औरत का, इसके वाहनन अला वाहन का, तो गोया कि औरत की तारीफ की है कि ये कोई मामूली काम नहीं है जो औरत करती है, ये बहुत अहम काम है, और जोफ पर जोर जोफ उठाकर बच्चे को वो अपने पेट में रखती है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान औरत के अंदर क्या कमजोरियां पैदा होती हैं, इसको आप रिसर्च कर सकते हैं। आप में से कोई भी अपने बेटी से बेटे से जो है वो कंप्यूटर में के, जिनके बेटे खास तौर पे डॉक्टर बन रहे हैं, और अगर कोई गायनी में है तो खास तौर पे आप उनसे जो है, ये आपका होमवर्क है कि आप करवा के लाएं, और उसमें क्या है कि अंदाजा होगा कि औरत के अंदर कितनी कमजोरी पैदा हो जाती है ना, तो इस कमजोरी जो है उसके लिए फिर क्या किया जाए कि अंदाजा होगा कि अल्लाह, यानी अल्लाह ने इतने साल पहले कह दिया कि हमलत हु मुहु वाहनन अला वाहनन, और आज साइंस उसको प्रूफ कर रही है, और साइंस प्रूफ ना भी करे, कुरान इसका मोहताज तो नहीं है, लेकिन आइनुल यकीन की कैफियत पैदा होती है ना, कि औरत, आप देखें रंग जर्द होना शुरू हो जाता है, बाजू का चेहरे जो है उस रंगत उसकी बदल जाती है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, नींद में कमी आ जाती है, खुराक में कमी हो जाती है, ताकत में कमी हो जाती है, काम नहीं होता जैसे भाग भाग के करते हैं, तो बहुत वाहनन अला वाहनन है ना, तो गौर करें इस पर, वाहनन अला वाहनन, वाफिसालु फी आमेन, और 2 साल जो है दूध पिलाने का अमल। ये देखें, ये आपके लिए कुछ पिक्चर्स हैं, ये इसमें इंसानी जो है वो हमारे जिस्म की जो लगी हुई मशीनरी है, आप इसको देखें, फिर इसके बाद आप देखें कि ये बच्चे की पैदाइश के जो इब्तदाई मराहिल हैं, ये उसकी तस्वीरें बनी हुई हैं, है ना, ये देखें ये जो नुतफा है ये इसका मंजर है, अंदरूनी मंजर, कितने छोटे 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 आपको जर्रे से नजर आ रहे हैं, तो इन जर्रों में से एक जो है वो जब मिलता है तो क्या है कि इंसान का जो है वो वजूद आता है, नुतफा सफर करता है, और उसको पता होता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, नुतफे का एक सर, एक गर्दन और एक दुम होती है, इसकी दुम रहम मादर में दाखिल होने में मछली की मानिंद इसकी मदद करती है। और फिर ये औरत के बच्चेदानी तक पहुंचता है तो फिर एक खास शक्ल जो है इख्तियार कर लेता है, उसको पता होता है कि कौन से हिस्से को, नुतफे के सर वाले हिस्से को बच्चे के कौन सी जगह पर पहुंचना है, और फिर किस तरह जो है माँ के अंदर का जो माहौल है उस नुतफे की परवरिश में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है, यहाँ का माहौल बड़ा तेजाबी होता है और उसको फायदा देता है, क्योंकि हिफाजती ढाल से ढांपने वाला तेजाब का अमल जो है वो माँ को फायदा देता है, तेजाबी अमल से जो जरसूमे है ना उसको तहफ्फुज़ मिलता है। फिर आप देखें इसके बाद ये एक और तस्वीर है, और इसमें क्या है कि अब नुतफे का अमल मजीद आगे बढ़ रहा है माहौल में, जिंदगी के एक बीज के तौर पर है ना, अब आप देखें ये इसमें क्या है कि अब मजीद जो है वो आगे जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और फिलोपी नाली इसे कहते हैं कि जिसमें मजीद इर्द गिर्द आपको चीजें जो है वो नजर आ रही हैं, जसूमे हैं जो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं, फिर नुतफे और बैजे का मिलाप है ना, आपस में औरत और मर्द का नुतफा ये मिल रहा है, और उसमें जो है वो हमल जो है अब ठहर गया है, अब माँ के जो रहम है उसमें चिमट गया है आकर ना, सेल की तादाद में कंटिन्यूसली जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है, सुम्मा जाला नस्लहू मिन सुलालतिम मिम्मा इम महीन, फिर आप देखें कि सत जिससे वो मजीद जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। अब वो खून का लोथड़ा बन गया है, अब ये वो मरला है। अब आप ये देखें ये तस्वीर, जिस्म के तीन तारीख हिस्से हैं और फेलोपी नाली है, रहमे मादर की अंदरूनी दीवार है, और वो हिस्सा जहां जनीन एक खास किस्म के लिक्विड मादे से भरी हुई एक थैली में नशोनुमा पाना शुरू करता है। यहाँ ये चीजें दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जमे हुए खून का लोथड़ा है और आंखें बनती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए बिल्कुल उसकी इब्तदाई शक्ल है। फिर आप और आगे चलें और आप यहाँ पे देखें ये मजीद कितना छोटा सा है लेकिन एक शक्ल बन, अब इंसानी चेहरे के इब्तदाई अयाम है। आप ये देखें, देखकर डर लगता है ना, लेकिन स्टार्ट में ऐसा होता है। फिर आप और आगे चलें, अब आप देखें कि अब मैं लाना चाह रही थी बात को कि दूध पिलाने का अमल ना। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो इम्यून सिस्टम एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं कि बच्चे को माँ के दूध में तैयारशुदा शक्ल में मिल जाते हैं और बच्चे को इसके दुश्मनों से बचा लेते हैं। ये बैक्टीरिया दुश्मन भी है आम दूध को। अगर 6 घंटों तक आप किसी कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ दें तो इसमें जरासीम पैदा होते हैं, आम दूध जो है, लेकिन माँ के दूध को इतने वक्त के लिए रख भी दिया जाए तो इसमें जरासीम पैदा नहीं होते, क्योंकि माँ के दूध में ऐसी चीज मौजूद होती है कि वो उसमें जम्स नहीं पैदा होने देती। फिर ये क्या करते हैं, ये बच्चे की हिफाजत करते हैं और माँ का जो दूध होता है आसानी से बच्चा उसको हजम करता है। और बच्चा आसानी से जब उसको हजम करता है, और बच्चे की सेहत के लिए माँ का दूध जो है वो बहुत अच्छा है। बाज माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, अपने जिस्म की हिफाजत के लिए, अपनी नजाकत के लिए, अपने हुसन और खूबसूरती के लिए। लेकिन एक बात याद रखें कि माँ का दूध बच्चे का हक है और ये एक नेचुरल फाउंटेन है जो अल्लाह ताला ने हर माँ को दिया है। ना उसको गर्म करना पड़ता है, ना उसको जो है वो धोना पड़ता है, ना उसके लिए कोई जो है वो मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। आराम के साथ और बल्कि चंद घड़ियां सुकून की मिल जाती हैं जितनी देर बच्चे को दूध पिलाते हैं। आप बैठते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं, और बच्चा जो है जब आप उसको गोद में लेते हैं दूध पिलाते हैं, अपने माँ के साथ एक अपनाइत और तमानियत महसूस करता है, और वो माँ का कुर्ब उसको तहफ्फुज़ का एहसास देता है। साइंस मुख्तलिफ और भी बातें कहती है। अच्छा बहरहाल, अच्छा अब हमारे लिए अहम बात क्या है कि माँ का दूध बच्चे को क्या फायदे देता है, इसके अलावा माँ का दूध कितनी दफा और कितने वक्फों से पिलाना चाहिए। इसके लिए भी जरूरत नहीं है कहीं बाहर जाने के लिए, बल्कि क्या है कि माँ का दूध जो है इसके बारे में साइंस जो है वो क्या बताती है कि उसे खुद ब खुद, यानी माँ बच्चे को जब दूध पीने का वक्त होता है ना, माँ के सीने में दूध उतरना शुरू हो जाता है, उसको उधर से बच्चे दूध उतरता है, उसको खुद इज़तरारी तौर पर पता चल जाता है कि अब बच्चे को भूख लग गई है और अब बच्चे के दूध का टाइम हो गया। कंप्यूटर सिस्टम नहीं है कि खुद ब खुद कंप्यूटर आगे करता चला जाता है काम। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने निजाम औकात के जो वक्फे दिए हैं कि एक तरफ बच्चे के पेट में जो है वो एसिड में वाफिक मिकदार में जब बनता है तो उसका ये फायदा होता है कि उसको सहूलत होती है कि वो इंतजार करता है दूध का, और उसके निजामे हजम को जो शदीद नुकसान जो पहुंचता है तो दूध उसको फायदा देता है। और कहते हैं कि दूध बड़ी जल्दी हजम हो जाता है, माँ का दूध बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। और इसके अलावा कहते हैं कि शुरू के 6 महीनों में माँ के दूध में एंटीबॉडीज पाई जाती है जो बच्चे को छूत छात की बीमारियों से महफूज रखती है। इसमें चेचक की बीमारी के बचने के लिए भी एंटीबॉडीज होते हैं, और उसके उससे क्या फायदा होता है कि बच्चा जो है ना उसको बीमारी नहीं पहुंचती अगर वो माँ का दूध जो है वो पीता है। और माँ के दूध में फौलाद की कमी होती है। हालिया जैसे कुछ लोगों का ये ख्याल था कि माँ का दूध नहीं देना चाहिए, ये कमी है वो कमी है, लेकिन कहते हैं साइंस ने रिसर्च से ये बात अब बताई कि बचपन में ही खून जो होता है ना जिगर में ही पैदा होता है, और बड़े जब होते हैं तो खून हड्डी के गुदे में बनता है। जब बच्चा अभी माँ के पेट में ही होता है तो इसके जिगर में फौलाद जखीरा शुदा होता है, तो तो अब आप देख लें कि अब ये कह रहे हैं और अल्लाह ताला ने इतना अरसा पहले ये बात जो है वो कह दी। तो बहरहाल दूध पिलाने के लिए इसके फायदे बहुत हैं, और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, दूसरे जो जानवरों का, कहते हैं माँ का दूध पीने वाले बच्चे ज्यादा ज़हीन होते हैं, ज्यादा सेहतमंद होते हैं, और इसके अलावा उनको तहफ्फुज का एहसास और मादरी शफकत का एहसास जो है वो ज्यादा मिलता है। फिर माँ का, माएं जो दूध पिलाती हैं, ऐसी माएं जो हैं वो सीने के कैंसर से महफूज रहती हैं। तो कैंसर से बचाव का भी दूध पिलाना एक मुअस्सर जरिया है। और दूध पिलाने से कहते हैं कि माँ के जो ग्लैंड्स हैं ना अंदर जिस्म के, वो खुद ब खुद सुकड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे माँ खुद ही जो है वो चुस्त होती है, उसका जिस्म जो है वो ऐसा हो जाता है कि जैसे एक तवाजुन और हमांगी, जैसे हमल के दौरान औरत मोटी हो जाती है ना, तो दूध पिलाने के अमल से जब गुजरती है तो औरत जो है वो फिर स्मार्ट और खूबसूरत हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो खुद ही एक ऐसा निजाम कायम किया है दूध पिलाने का कि इस दौरान जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स की रतूबतें होती हैं, इससे औरत के जिस्म के अंदर एक हमांगी और तवाजुन का निजाम जो है वो पैदा हो जाता है। तो दूध पिलाने वाली माँ सेहतमंद होती है, माँ का दूध पीने वाला बच्चा सेहतमंद होता है। ये इनाम कुरान मजीद का एक अजीम तोहफा है जो अल्लाह ताला ने कहा, वफिसालहू फी आमैन, और यहाँ पे उसका दूध छुड़ाना 2 साल है, 2 साल। इससे हमें क्या बात पता चलती है कि बच्चे को 2 साल दूध पिलाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। वो के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की एक राय ये भी मिलती है कि 2.5 साल, लेकिन बहरहाल आप सूरत अल बकरा में भी ये बात जो है वो पढ़ चुकी कि दूध पिलाने का अमल जो है वो 2 साल है। लेकिन माँ बाप अगर चाहें तो मशवरे से उसको, चाहें किसी और से पिलवाना चाहें तो ये भी हो सकता है, मशवरे से माँ बाप तय कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं मुद्दत को चाहें तो, लेकिन 2 साल उसकी कुरान मुद्दत बताता है। अनिश कुरली फिर कहा कि मेरा शुक्र अदा कर वाले वालदेक और अपने वालदेन का। अब इसीलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालदेन का, शुरू में भी अल्लाह का शुक्र और फिर वालदेन का, फिर उसके बाद वालदेन में से खास तौर पर माँ का जिक्र किया। तो माँ का हक खिदमत ज्यादा है, माँ जो है उसकी खिदमत करना, उसका ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में मैं आपको हदीस जुरैज सुनाती हूँ, पहले भी सुना चुकी हूँ, इसको आप याद कर लें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बच्चों के सिवा किसी ने जो है वो महद में कलाम नहीं किया। महद किसे कहते हैं? गोद, गोद। ईसा इब्ने मरियम और साहिब जुरैज। जुरैज एक आबिद था और एक और बच्चा भी था, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ फिर बता दूंगी। ईसा इब्ने मरियम और साहिब जुरैज, जुरैज एक आबिद था जिसने एक इबादत खाना बना रखा था। एक दिन इसकी माँ आई और वो नमाज पढ़ रहा था, दूर जंगल में कहीं रहते थे। माँ ने कहा, ओ जुरैज, इसने दिल में कहा, या अल्लाह, एक तरफ माँ है और एक तरफ नमाज, और वो नमाज में लगा रहा हत्ता कि इसकी माँ वापस चली गई। दूसरे दिन फिर इसकी माँ आई और पुकारा, ए जुरैज, इसने दिल में कहा, या अल्लाह, एक तरफ माँ है और एक तरफ नमाज, आखिर वो नमाज में ही लगा रहा। अब की इसकी माँ के मुंह से बददुआ निकल गई, कहने लगी, या अल्लाह, इसे मौत ना देना जब तक ये किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। बनी इसराइल में जुरैज और इसकी इबादत का चर्चा होने लगा। इनमें से एक बदकार औरत थी जिसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी। वो कहने लगी, अगर तुम चाहते हो तो मैं उसे फंसाऊं। चुनाचे इसने अपने आप को जुरैज पर पेश किया, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जो ना हुआ। फिर वो एक चरवाहे के पास गई जो इसके इबादत खाने के पास ठहरा करता था, और इसने अपने आप को इसके हवाले कर दिया। चुनाचा चरवाहे ने इससे सोहबत की तो वो हामला हो गई। फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी, ये जुरैज का बच्चा है। लोग आए, उसे इबादत खाने से निकाला और उसे गिरा दिया और उसकी पिटाई करने लगे। जुरैज ने पूछा, कोई बात तो बताओ। कहने लगे, तूने इस फाहिशा से जिना किया और अब तो इसके बच्चा भी पैदा हो चुका। जुरैज ने कहा, वो बच्चा कहाँ है, लोग बच्चा लेकर आए तो। जुरैज ने पूछा, जरा ठहरो, मैं नमाज पढ़ लूं। फिर वो नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए, इसके पेट में जो है वो ठोका दिया, जैसे कचोका दिया, और कहा, बच्चे बताओ तुम्हारा बाप कौन है। बच्चा बोल उठा, फलां चरवाहा है। फिर तो लोग जुरैज के पास आकर उसे बोसे देने लगे और कहने लगे, हम तुम्हारे लिए सोने की इबादत का बना देते हैं। जुरैज ने कहा, नहीं, बस ऐसी ही मट्टी का बना दो। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही मट्टी का बनाया। तीसरे बनी इसराइल में एक औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, इधर से एक निहायत खुश वजा सवार गुजरा, बहुत खूबसूरत शख्स था, घोड़े पर गुजरा। वो औरत इस सवार को देखकर कहने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चे को इस घुड़सवार जैसा कर दे। बच्चे ने माँ की छाती छोड़कर कहा, या अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना। फिर वो दूध पीने लगा। फिर वहां से एक लौंडी गुजरी जिसे लोग मारते जाते थे, और वो औरत कहने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा ना बनाना। बच्चे ने छाती छोड़ दी और वो बोल उठा, या अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाना। मैंने अपने बच्चे से कहा, ओ सर मुंडे, उसके सर के बाल उतरे हुए थे, कि तू ऐसा क्यों कहता है। बच्चे ने कहा, वो सवार तो जालिम लोगों से ताल्लुक रखता है और जालिम है, और इस लौंडी के मुतल्लिक लोग कहते हैं कि इसने चोरी की और जिना किया, हालांकि इसने कुछ भी नहीं किया। ये इमाम मुस्लिम की रवायत है। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई, इसमें तीन बच्चों के बारे में बताया कि वो उन्होंने माँ की गोद में बात की है। हजरत ईसा का तो आप पढ़ ही चुके पीछे सूरतों में भी, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। दूसरा साहिब जुरेज, जुरेज नहीं बोले, जुरेज का साथी बोला है, वो जो समझ आ गई ना, साहिब जुरेज, जुरेज का साथी बोला है ना, वो छोटा सा बच्चा जो चरवाहे का बच्चा था, वो जो खूबसूरत औरत के वतन से पैदा हुआ, तो वो बच्चे ने गवाही दी कि मैं इसका नहीं हूं ना, जुरेज का नहीं, साहिब जुरेज, जुरेज का साथी, जुरेज का साथी बोला है। और तीसरा वो बनी इसराइल की जो औरत थी उसकी गोद में जो बच्चा था, तो जाहिर देखकर मां कह रही थी ऐसा, उसको नहीं पता था कि लौंडी पर इल्जाम लगवाया जा रहा है। अच्छा, ये जो हजरत जुरेज थे, ये क्या इबादत कर रहे थे? ये नफली इबादत कर रहे थे। तो अमल के लिए जो उसूल हमारे सामने आता है वो ये है कि अगर तो है फर्ज नमाज या फर्ज जो फराइज है जिंदगी के, इसमें अगर वालदैन जो हैं वो औलाद को मजबूर करें शिर्क करने पर, गुनाह करने पर, तो वालदैन का कहना मानना जायज नहीं है फराइज के मामले में, है ना? क्योंकि अगर किसी के वालदैन औलाद को मजबूर करें कि वो शिर्क करें, तो वालदैन को का कहना औलाद को नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना? आप पीछे से साथ भी नबी वकास रजी अल्लाह का वाकया भी पढ़ी चुके हैं, वो शिर्क पर मजबूर करती थी, अभी अगली आयत में भी यही है। और हाँ, ये जो इबादत वो कर रहे थे नफली इबादत थी, तो नफली इबादत में अगर औलाद मशगूल हो और वालदैन में से कोई से पुकारे, तो नमाज तोड़ कर भी इस आवाज पर लबैक कहना चाहिए और इनका हुक्म बजा लाना चाहिए। और आप देखेंगे नमाज फर्ज नमाज तो पांच ही है ना, और बाकी ये कि बाज बच्चे हैं हमसायों की खिदमत कर रहे हैं, हम वॉलेंटियर हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं, वालदैन की खबर नहीं लेते, बीमार है, दवाई देनी है, उनको ग्रोसरी की जरूरत है, वो इस बर्फ में निकल नहीं सकते, सारा वक्त बाहर रहेंगे, इधर उधर दोस्तों के साथ हैं, और कहेंगे कि हम हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं। एक औरत अमेरिका में मुझसे बार बार ये सवाल पूछती थी कि बताओ कि मेरा बेटा है सारा दिन दीन की खिदमत करता है, मुझे टाइम नहीं देता, तो क्या मेरा वक्त मेरी खिदमत करना इस्लाम ने उसको नहीं बताया? तो क्या है ये जिंदगी में तवाजुन का ना होना, दीन की सही समझ का ना होना, है ना? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक सहाबी को जिहाद से वापिस भेज दिया, वो उन्होंने बताया कि मैं जिहाद पर आया हूँ वालदैन को रोता छोड़कर, उनकी इजाजत के बगैर आ गए थे, कहा कि जा जिस तरह उनको रुला कर आया था जाके उनको हंसा और उनकी खिदमत कर, है ना? तो वालदैन के बहुत हकूक हैं। और यहाँ पे भी जो बात कही जा रही है, निशकुरली कि मेरा शुक्र कर, वले वालदैक, और अपने वालदैन का, यहाँ पे भी वले वालदैन था, नून गिर चुका है, और कहा कि अपने दोनों वालदैन का शुक्र अदा कर, उनकी खिदमत कर, इलैहिल मसीर, मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। ये बड़ी खूबसूरत बात है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताई है, इलैहिल मसीर, इसके मानी क्या है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर तुझे मेरी ही तरफ लौट कर आना है। अगर तुमने मेरे हक अदा करने में या वालदैन की शुक्रगुजारी में उनकी खिदमत में कोई कमी कर दी, तो भाग कर जाओगे कहां? कोई जाए फरार नहीं है, कहीं भाग कर जाने की जगह नहीं है, फिर क्या होगा कि मेरी ही तरफ लौट कर आना होगा। यानी कयामत, आखरत, हिसाब किताब का तसव्वुर दिलाकर इंसान को जो है वो डराया जा रहा है कि तुम जो है ना तो तौहीद के खिलाफ कोई अमल करो और ना ही वालदेन को नाराज करो, उनके अदब एहतराम, उनकी खिदमत, मोहब्बत, शफकत में कोई कमी करो। तो जो मुखलिस लोग हैं फिर उनका क्या तौर तरीके होता है? एक तरफ वो तौहीद परस्त होते हैं, दूसरी तरफ वालदैन की खिदमत करते हैं। अगर वालदैन बूढ़े हैं तो उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाते हैं, अगर वो मोहताज हैं तो फिर उनकी माली मदद करते हैं। वो ये नहीं कहते कि वालदैन ने बच्चे पैदा किए थे हमारे लिए, अब हम ही कमाई करते रहे उनको देते रहे, नहीं। वो कहते हैं कि मेरे वालदैन जो हैं उनको जरूरत है घर के खर्चे में, तो वो अपने माँ बाप की का साथ देते हैं। और इसकी कोई हद नहीं है एहसान के दर्जे की नेकी करनी, वह बिल वालिदैनी एहसाना वइन जाहदा का। और अगर वो दोनों तुझे तुझे मजबूर करे, आप पढ़ी चुकी जीमहा दाल इंतहाई कोशिश के लिए है, और यहाँ पे अलिफ का इजाफा है जाहदा का, है ना, कि अगर वो तुझ पर इंतहाई दबाव डालें, अगर वो दोनों तुम्हें मजबूर करें। क्या बात बताई जा रही है कि अगर वो वालदैन दोनों तुझे मजबूर करते हैं, तुझ पर दबाव डालते हैं। यहां पर आप देखें कि जाहदा का के मानी क्या है, यहां पर बताया ये जा रहा है कि अगर वो दोनों कोशिश करें, इंतहाई कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या अला इस बात पर अंतुश्री का भी कि तू शरीक करे मेरे साथ, मा लैसा लका भी इल्म, जिसको तू नहीं जानता, मा लैसा लका भी इल्म, जो तेरे इल्म में ही नहीं है, फला तुते हुमा, तो इन दोनों का कहना ना मानना, फिर इन दोनों की अतात नहीं करनी। अब यहां पे ना तवाजुन सिखाया जा रहा है अल्लाह के हक में, और वालदैन का जो हक है इसमें क्या है कि एक तवाजुन है, कि अल्लाह का हक सबसे ऊपर है, अल्लाह के हक के नीचे है सबका हक। हत्ता के वालदैन का जिक्र अपने साथ तो किया, लेकिन ये कहा कि अगर तेरे वालदैन तुझे ये मजबूर करें कि मुझे छोड़कर, यानी गोया के मेरे अलावा तू अपने वालदैन को जो है वो वालदैन का तू कहना माने, वो तुझे शिर्क करने को कहें, तो फिर तू अपने वालदैन का कहना ना मानना। अल्लाह का जो कानून है ना इस्लाम, ये कानून अदल है, बड़ा खूबसूरत दीन है। अल्लाह ताला हुक्म ये दे, एक तरफ कह रहे हैं कि बात मानो, दूसरी तरफ कह रहे हैं इनकी बात ना मानो। तो बात कौन सी माननी है जो अल्लाह की अतात में है? जब वालदैन अल्लाह की नाफरमानी के लिए कहें बेटे से, फिर उनका जो है वो कहना नहीं मानना, फिर उनकी अतात नहीं करनी। अच्छा, अब क्या हुआ कि वालदैन ने शिर्क करने को कहा, अल्लाह ताला ने कहा फला तोते हुमा, फिर तूने शिर्क नहीं करना, और ये भी कहा कि माँ लैसा लक भी, तेरे पास इल्म ही नहीं है, तो गोया के क्योंकि कुरान में कहीं है ही नहीं कि किसी और को भी अल्लाह के साथ जो है वो शामिल किया जा सकता है अल्लाह के इख्तियारात में, हकूक में, फराइज में, और अल्लाह के इलाह होने में किसी को शामिल नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, अब क्या कहा, वसाहिब हुमा फिद दुनिया मारूफन, लेकिन दुनिया में इनके साथ जो है मारूफ रहना, नेक बर्ताव करना, यहां पे मारूफ की कैद है। इसके मानी क्या है कि एक तरफ कहा कि कहना ना मान, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं लेकिन दुनिया में इनके साथ जो है वो उर्फ के मुताबिक रहना, मारूफ, इनके साथ अच्छी तरह गुजर बसर। मारूफ क्या होता है? उर्फ, जानी पहचानी, इस तरह से रहना जैसे कि लोग रहा करते हैं, दस्तूर के मुताबिक मामला करना, जैसे कि लोग अपने वालदैन के साथ मामला किया करते हैं। अच्छा, अब इसके मान ये हैं कि अब मसलन वालदैन शिर्क का कह रहे हैं, आपने शिर्क तो नहीं किया, लेकिन ये नहीं इसका मतलब कि वालदैन के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दो, बदकलामी करनी शुरू कर दो, या उनकी तोहीन करो। हर चीज की एक हद है ना, तो वालदैन की अतात ना करने के साथ हदबंदी कर दी, लेकिन दुनिया में उनके साथ मारूफ रवैया इख्तियार करना, मसलन जिस्मानी खिदमत है, माली अखराजात है, इसमें कमी ना होने देना, दुनिया के लिहाज से बेअदबी ना करना, कोई ऐसी बात ना करना जिससे उनकी दिल उजारी हो। गोया के शिर्क और कुफर के मामले में अगर उनका कहना नहीं मानोगे तो वो तो नहीं मानना। जैसे कि हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह के बारे में कहते हैं कि ये आयत, आयत नंबर 15 भी उनके बारे में नाजिल हुई है, यानी वहां पे भी यहाँ पे भी, क्योंकि वालदा जब मजबूर कर रही थी कि खाना नहीं खाऊंगी, साये में नहीं आऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, है ना, और वो जाकर खड़ी हो गई थी और कहते बेहोश हो गई थी, और कहा था कि जब तक वो अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे तो वो कहना ही नहीं मानेगी, आगे नहीं आए यानी कुछ खाए पिएगी नहीं। तो अल्लाह ताला ने एक तरफ सूरत अंकबूत में आयतें आ गई और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने जो है वो आयतें नाजिल कर दी। जैसे सूरत अंकबूत में भी क्या है, वस्तईन अल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतीहुमा इलैया मर्जिउकुम फअनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। बिल्कुल मिलती जुलती आयतें है ना। तो उससे भी हमें क्या बात पता चलती है कि वालदेन को राजी करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना। ला ताता लि अहदिन फी मासियतिल्लाही तबारका व तआला, ये मुस्नद अहमद की रवायत है। लेकिन दुनिया के मामले में उनके साथ हुस्ने सलूक करना है। तो बेशक वालदेन काफिर भी हो ना, दुनिया के लिहाज से दस्तूर के मुताबिक उनकी जिस्मानी खिदमत, माली खिदमत में कमी नहीं करनी। ये नहीं कि वो काफिर हैं, अल्लाह और उनका मामला है कि वो कुफर कर रहे हैं। आप समझाते चले जाएंगे और उसके साथ क्या करेंगे कि उनके साथ हुस्ने सलूक करना, बातचीत में, माल में, खिदमत में कोई कमी ना करना। साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना कि मेरी वालदा आई हैं और वो जो हैं वो काफिरा हैं, अब मैं उनके साथ क्या तोहफा तोहफ़ दे सकती हूँ, हुस्ने सलूक कर सकती हूँ। तो आपने कहा था कि हाँ आप दे सकती हैं तोहफा तोहफ़ भी और हुस्ने सलूक कर सकती हैं। फिर फरमाया वत्तबे सबील मन अनाबा इलैही, और पैरवी कर। वत्तबे यहाँ पे ऑर्डर का सीगा भी है, तापे शद भी है, और क्या कहा जा रहा है, और इतबा कर सबीला उस रास्ते की, मन अनाबा इलैही जिसने मेरी तरफ रजू किया है। अब पैरवी उस शख्स के रास्ते की करना, मन अनाब नौब से है पलटने वाला, रजू करना, बार बार पलटना। मुनीब वो कल्बे मुनीब वो दिल होता है जो बार बार अल्लाह की तरफ जो है वो पलटता है, बार बार अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करता है। तो यहां पर भी जो बात बताई जा रही है वो यही है कि पैरवी करना उसके रास्ते की, मन अनाबा इलैया जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अब किनके पीछे चलना, ये ना हो कि पीयर प्रेशर की वजह से तुम जो है वो नेक लोगों का रास्ता छोड़ दो। बताया जा रहा है कि तुम्हारे लीडर, तुम्हारे रहनुमा कौन होने चाहिए, तुम्हारे लीडर, तुम्हारे रहनुमा वो लोग होने चाहिए जो मेरी पैरवी करते हैं। मन अनाब इलैही यानी मन अनाबा इलैया, जो मेरी तरफ लौट कर आते हैं, सिर्फ अल्लाह के रास्ते की पैरवी करने वाले हैं। तब आप देख लें, हम भी अपना जायजा लें कि हम किसकी पैरवी करते हैं, जमाना, रस्म और रवाज, दोस्त, या अल्लाह से दूर लोग, खिलाड़ी हैं और मॉडल, मॉडलिंग करने वाले, फिल्मी स्टार हैं, है ना, किसकी पैरवी करते हैं। व तबे सबील मन अनाबा इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फअनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। फिर कहा, फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। किसको? मर्जिउकुम सबको। कौन मुराद है? औलाद भी और वालदैन भी। वो औलाद जिसने वालदान वालदैन के पीछे लगकर, यानी वालदैन की वजह से उन्होंने जो है वो अल्लाह की नाफरमानी की, वो भी अल्लाह ही के पास जाएंगे। और वो वालदैन जो औलाद को शिर्क पर मजबूर करते हैं, मक्का में बहुत से वालदैन जो थे वो अपनी औलाद को नेक नहीं बनने देते थे, और बहुत सी औलाद अपने वालदैन को कुफर करने पर मजबूर करती है। तो औलाद हो या वालदैन, सबको पलटना मेरी ही तरफ है। फअनब्बिउकुम, फिर मैं बता दूंगा तुमको, बिमा कुंतुम तअमलून, जो कुछ तुम दुनिया में करते रहे, कि दुनिया में तुम्हारे अमल जो थे वो कैसे थे। तो यहाँ पे जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि हर हाल में जो है वो अल्लाह की बंदगी करनी है, और अल्लाह की बंदगी में जो कसूर होंगे, गलतियां होंगी, जो गुनाह होंगे, खा वालदेन से हों या बच्चों से, जो ज्यादतियां होंगी, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आओगे, फअनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे। अब आप देख लें कि आज औलाद अपने वालदैन को कहती है मेरे वालदैन अच्छे नहीं, कोई कहता है कि मेरे मेरा तो वालिदी पागल है, कोई कहता है मेरी माँ जो है, मेरी माँ ने हमारी कोई तरबियत ही नहीं की। पिछले दिनों एक औरत इस बात पे बड़ी अफसरदा थी, कहती है मेरी माँ कहती है, माँ कहती है मेरी बेटी कहती है कि तूने हमारी अच्छी तरबियत नहीं की, तूने हमारी अच्छी तरबियत नहीं की। तो माँ बहुत ही अफसरदा थी, बहुत ही उदास थी। तो अब आप देखें कि अगर औलाद जो है वो माँ बाप को ऐसे कहे, और बाज़ औक़ात औलाद जो है आप अपनी औलाद को जब समझाते हैं तो सोसाइटी में अब ऐसे मिसालें जो हैं वो मिलती हैं। अभी जो एक स्कॉलर इमाम शोहाब जो है वो बता रहे थे कि एक बच्चे ने जो है वो 911 को कॉल किया, क्यों कॉल किया, अपने बाप के खिलाफ कि मेरा बाप जो है ये नमाज पढ़ने को कहता है और इस्लाम की जो बातें वो कहता है, तो 911 को कॉल किया। और आप सोचें कि वालदेन को पुलिस पकड़ कर लेके जाए और वो जेल में डाले और वो उनकी बेइज्जती करे और तोहीन करे, तो क्या यहाँ का मीडिया या यहाँ की सोसाइटी या यहाँ के लोग जो हैं क्या वो ज्यादा खैरख्वाह हैं वालदेन की निस्बत? तो हमारे यहाँ ऐसी मिसालें जो हैं वो हो रही हैं कि बाज औलाद जो है वो अपने वालदेन से हुस्ने सुलूक नहीं कर रही, और बाज वालदेन जो है ना उन्होंने औलाद को तौहीद की तालीम नहीं दी, दीन की तालीम नहीं दी। ये टू वे ट्रैफिक है, एक तरफ वालदे वालिद का बताया कि उसने कहा या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला, दूसरी तरफ औलाद को बताया कि तुम अपने वालदेन के साथ हुस्ने सलूक करो, है ना। और ये जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये हमने ये बात कही थी, हमने ये नसीहत की थी कि अल्लाह का कहना मानना है, किसी और का कहना नहीं मानना। तो वालदेन ने औलाद की तरबियत में, परवरिश में, निगहदाश्त में, उनके हुकूक देने में अगर अच्छा नाम नहीं दिया, जैसे एक लड़का लड़के का बाप हजरत उमर के पास आया और शिकायत की कि जो है ये मेरा हक अदा नहीं करता, तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ने उनसे सारी बात सुनी, तो आपने फरमाया, आपने कहा कि तू और तेरा माल सारा कुछ तेरे बाप का है, तो उसने जो है वो बेटे ने कहा कि मेरे बाप ने मुझे एक भी मेरा हक अदा नहीं किया। पूछा कि क्या हक है, हजरत उमर रजी अल्लाह ने बताया कि उसको अच्छा नाम दे, उसकी ये अच्छी माँ का इंतखाब करे, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे। तो वो लड़का कहने लगा कि मेरे बाप ने मेरा एक हक भी अदा नहीं किया। कहा कैसे? कहा कि इसने मेरा नाम जोला पे रखा, जोला जीम आइन लाम अलिफ हमजा, मकड़े का एक नाम है, काला मकड़ा या मकड़ा। अब आप देखें, दूसरा कहा कि इसने मेरे लिए एक मजूसी औरत का इंतखाब किया, इसने एक मुसलमान औरत से शादी भी नहीं की, एक गैर मजहब की औरत से शादी की। तो अब बच्चे की तालीम और तरबियत ही नहीं है तो उसको क्या पता हो कि माँ बाप के हकूक क्या हैं। और फिर तीसरा कि इसने मेरी तालीम और तरबियत भी नहीं की। तो दोनों के फराइज और जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप के भी और बच्चों के भी। तुम इलैया मर्जिउकुम, फिर तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है, फाउनबीउकुम, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, बिमा कुन तुम तामलून, के तुम दुनिया में कैसे अमल करते रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, आज का सबक जो है वो हमें बताता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी हकीम और दाना बन जाएं, अगर हम हिकमत से माला माल हो जाएं, तो हमें अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहिए, रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह। दूसरी बात ये पता चलती है कि एक अल्लाह की जो है वो बंदगी करना, ये शुक्र जो है ना दरअसल ये अल्लाह की बंदगी है। जिसके पास हिकमत है वो शुक्र गुजार होता है, जो शुक्र गुजार होता है वो अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता चला जाता है। अब याद रखिएगा पूरा सबक जो है ना इसका एक आयत का दूसरी से लिंक है। नंबर एक, हिकमत। हिकमत क्या है? शुक्र है। शुक्र क्या है? अल्लाह की बंदगी है, तौहीद है। और तौहीद क्या है? हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद अदा करना, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले जिसका हक आता है वो वालदेन का आता है। तो वालदेन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए, तो वालदेन औलाद के साथ अच्छा मामला करें। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, हम आपसे दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं, बेहतरीन इबादत करना और बेहतरीन शुक्र करना, है ना। अन अज करू का नियमत का व इबादत, हम तेरा जिक्र भी करें और तेरी इबादत भी करें। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। और इसके अलावा हमें वालदैन का हुस्ने सलूक करने के लिए क्या करना चाहिए? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिजअलनी मुकीमस सलाती व मिन जुर्रियती व मिन जुर्रियती, रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना अग्फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। तो बस एक बात याद रखें वालदैन के साथ हुस्ने सलूक में कि अगर हम अपने वालदैन का सिर्फ दिल दुखाते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, तो ये गुनाह कबीरा है, ये याद रखें। इससे आप अंदाजा कर लें, क्योंकि उफ नहीं ना कहना और दिल दुखाना और मदर डे मनाना और फादर डे मनाना और एक दफा गुलदस्ता पेश करके एक दफा उनको खिला पिला के वालदैन का हक अदा नहीं होता। हर शाम मदर डे हो, हर सुबह फादर डे हो, हर सुबह मदर डे हो, हर शाम फादर डे हो, सुबह हो के शाम हो, दिन हो के रात हो, वो याद रखें। वो तीन लोगों पर मुश्किल जो टली थी, उनमें से एक आदमी कौन सा था जो सारी रात माँ बाप के, बूढ़े माँ बाप के सराहने दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा? अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रसूल अल्लाह ने उनको क्या टाइटल दिया? खैरुत ताबेईन। और हजरत उमर रजी अल्लाह ने उसे कहा, अगर हो सके तो ए उमर तू अवैस करनी से दुआए मगफरत करवा लेना कि जब वो अल्लाह के नाम की कसम खाता है तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देता है। अवैस करनी कौन थे? रसूल अल्लाह का दौर मौजूद था लेकिन सहाबी के शर्फ से महरूम हो गए। जिसने लम्हे की सोहबत पाई रसूल अल्लाह की वो सहाबी बन गया। ये दूर यमन के इलाके में रहते थे लेकिन रसूल अल्लाह के पास नहीं गए, मुसलमान हो चुके थे। वालदा बूढ़ी थी, बीमार थी, हज नहीं किया जब तक मां जिंदा रही, और रसूल अल्लाह के पास भी नहीं गए। जिब्राइल के जरिए आपको अवैस करने की खबर दी गई। और इनके बारे में आता है ना कि गजवाए उहद में जब आपके दांत शहीद हो गए थे तो इन्होंने अवैस करनी ने दांत अपना, ये शायद ये आपका नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक एक करके दांत निकाल दिए। गुमनाम शख्सियत थी। और हजरत उमर रजी अल्लाह ने जब इस्लाम फैला आपके जमाने में, बहुत से काफले आए तो एक काफले में ही आए थे, रसूल अल्लाह ने खुशखबरी दी थी कि वो आएंगे ना, तो आपने पहचान लिया। तो उन्होंने पूछा कि कैसे आपने मुझे पहचान लिया? हजरत अवैस ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हर वक्त जो काफले आते थे ना खबर लेते रहते थे टो कि इस निशानी का वो आदमी आया कि नहीं। और हजरत उमर वो जिन्हें देखकर शैतान रास्ता छोड़ दे, शैतान हजरत उमर से इतना डरता था कि जिस रास्ते पे वो चलते थे वो आगे आगे भागता था, वो रास्ते से हट जाता था। और रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई पैगंबर आता तो उमरे फारूक होते। और आपने जो है वो जन्नत में जब महल देखा, बड़ा खूबसूरत महल, और आपने पूछा ये किसका है, कहा कि ये उमर का है। आपने, आपका दिल चाहा कि मैं उसका पर्दा हटाकर देखूं अंदर से, कहा कि उमर मुझे तेरी गैरत का ख्याल आ गया। और वो उमर, और उस उम्र से कहा उम्र फारूक रजी अल्लाह नो के हो सके तो अवैस करनी से दुआए मगफरत करवा लेना। तो जो अपने वालदेन की खिदमत करते हैं वो दुनिया में जन्नत में महल बनाते हैं। वालदेन कोई मट्टी का ढेर है, कोई गंदगी का बोझ है, कोई कूड़ा क्रिकेट है, कोई गार्बेज है कि उनको ओल्ड हाउसेज में फेंक दिया जाए। और वो अपने बच्चों को कितनी मोहब्बत से पालते हैं। आप देखें, आप नाश्ता नहीं करती अगर आपका बच्चा नाश्ता किसी वजह से ना करके जाए, आपका दिल नहीं करता कि मेरा बच्चे ने नाश्ता ही नहीं किया, अब वो स्कूल में कैसे रहेगा? अरे जैकेट नहीं पहन के गया, आज उसने स्नो पैंट नहीं पहनी, बाहर इतनी स्नो है। आप कितनी थकी हुई, आप कहती हैं ठहरो बेटा मैं तुम्हें जाके छोड़ आती हूँ गाड़ी से, वो कहते नहीं अम्मी ठहरे कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा। आप उसको कहते बेटा ये दो निवाले तो ले ले, चले मैं तेरे मुंह में डालती हूँ ना। आप सोचे तो सही कि आप अपने बच्चों को कैसे पाल रही हैं, आपके वालदेन ने आपको कैसे पाला होगा। तो मेरे और आपके शोहर के वालदेन जो सास ससुर हैं वो भी इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है ना, उनसे भी कमी कोताही हो जाती है। दिल सख्त नाम करें, उनसे मोहब्बत करें, हुस्ने सलूक करें। अगर मेरे शोहर के वालदेन उससे रूठ गए तो उसकी जन्नत उससे रूठ गई। और मैं तो अक्सर यही बात सोचती हूँ कि शोहर जो इतना पढ़ा लिखा है, इतनी खूबसूरत शख्सियत है, इतनी खूबसूरत इसकी तनख्वाह है, इतनी खूबसूरत इसकी गाड़ी है, मेरे शोहर की कोई भी माना के खूबी ना सही। मिसाल एक दे रही हूं, हम इतनी नाशुक्री करते हैं, अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे औलाद दे दी। अगर वो ना होता, मेरी शादी ना होती, कितनी औरतें हैं आज बगैर शादी के बैठी हुई है ना। तो मुझे अल्लाह ने घर दिया, शोहर दिया, सारा कुछ दिया और औलाद दी। और आज मैं, मुझे सारी चीजें अच्छी लगती हैं, उसके माँ बाप मुझे इतने बुरे लगते हैं कि मैं उनकी खिदमत नहीं करना चाहती और शोहर को करने नहीं देती और नाराज हो जाती हूँ, घर में लड़ाई झगड़े हैं। बड़ा दिल मेरा इस बात पे अफसरदा होता है कि एक बेटा माँ बाप को धक्का देता है कि दूसरे के पास क्यों नहीं जाती, दूसरा धक्का देता है कि तीसरे के पास क्यों नहीं जाती, तीसरा धक्का देता है कि चौथे के पास क्यों नहीं जाती। और आप सोचें कि वालदा तो कभी धक्के नहीं देती ना, वाले तो कभी धक्के नहीं देता ना, कैसे भी औलाद शुरू करे माँ बाप जिगर का खून दे दे के औलाद की परवरिश करता है पालता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहा है कि लोगों की जिंदगी में तवाज़ुन नहीं है, हकूक की अदायगी में तवाज़ुन नहीं है। तो जिसका हक है ना उसको मुकदम रखना चाहिए, और मुझे और आपको भी जायजा लेना चाहिए कि मैंने और आपने अपने वालदेन के साथ कैसा सलूक किया, क्या हुस्ने सलूक किया कि नहीं। अगर किसी के वालदेन जिंदा हैं और अगर उनके घर पर बड़ी मुश्किलात और परेशानियां हैं, जॉब नहीं है, औलाद ठीक नहीं है, मसाइल बीमारियां मुसीबतों में घिरे हुए हैं, और उनका इलाज क्या है, अस्तगफार के साथ साथ अपने वालदेन को राजी करना, वालदेन की खिदमत करना। एक शख्स से गुनाह हो गया और कहा कि रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, कोई इसका तरीका भी है कि मेरा गुनाह माफ हो जाए। कहा क्या तेरी माँ जिंदा है, वो कहने लगा मेरी माँ तो जिंदा नहीं है। कहा तेरी खाला जिंदा है, कहने लगा कि हाँ। कहा जा उसकी खिदमत कर ताकि अल्लाह तुझे माफ कर दे। सोचे खाला की खिदमत से गुनाह हो माफ होंगे तो फिर माँ बाप जो है उनकी खिदमत से फिर क्या क्या नहीं मुझे और आपको मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी जन्नत बनाने वाला, गुनाहों को माफ करवाने वाला और सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस समीउ दुआ, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु।